31 अगस्त विश्व के साथ मैत्री संबंध बनाइए। 31 अगस्त संवत्सरी को जैन महावीर भवन आदर्श नगर में जनाचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया कि जीवन में परेशानी चाहे जितनी हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने पर कम हो जाती है, धैर्य रखने पर खत्म हो जाती है और परमात्मा की भक्ति करने पर खुशियों में बदल जाती है। यों तो जैन धर्म में छोटे छोटे जीव की हिंसा करना भी मना किया गया है, दूसरी तरफ अन्याय का विरोध करने के लिए 12 व्रतधारी श्रावक श्री चेदा महाराज ने भयंकर युद्ध किया था, जिस युद्ध में 2 दिन में 1,80,00,000 सैनिक मारे गए। काली, महाकाली आदि महारानियां जो भगवान के सानिध्य में दीक्षा अंगीकार की, उनके पुत्र 2 दिन के भयंकर युद्ध के पहले 10 दिन तक चले युद्ध में हर दिन मारे जा रहे थे, यानी कि चेड़ा और कोनिक का युद्ध चल रहा था। पहले दिन कालक कुमार सेनापति बनकर युद्ध में गया, तब उनकी माता काली ने भगवान महावीर के पास आकर पूछा, भगवान आज के युद्ध में मेरे बेटे का क्या हुआ? तो प्रभु बोले, वो तो वीरगति को प्राप्त हुआ। इससे काली महारानी की आत्मा को भारी झटका लगा, उन्हें संसार के नाशवान रूप का भान हुआ और उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर दीक्षा ले ली। इसी तरह काली, महाकाली आदि सभी का भी यही हाल हुआ। वैराग्य का जबरदस्त कारण होने से दीक्षा लेने के बाद भी भावों में इतनी जबरदस्त विरक्ति होने से सभी ने घोर तपश्चर्या की, शरीर को सुखा डाला। उन साध्वियां जी की तपस्याओं का वर्णन अंतर्गण में किया है। आज के रोज उपवास करके सभी से काम क्रोध मद मोह से दूर रहकर सभी से क्षमा याचना करते हुए मैत्री भाव कायम करना है। अपने पुराने अपराधों को गुरु के समक्ष स्वीकार करना है। मन में किसी के प्रति भी वैर विरोध हो तो उसे दूर करना है। गत वर्ष परिवार में किसी के भी साथ कलेश हुआ हो, उससे माफी मांगी जाए। यहाँ तक कि नौकर और पड़ोसी से भी भाईचारा संबंध बनाया जाए। परमात्मा की शरण भारी से भारी अपराध को धो देती है। हर आदमी की मृत्यु निश्चित है, कब कौन मर जाए इसका पता नहीं है, अतः हर दिन अपने मन मंदिर को भी साफ रखना जरूरी है। आज लाखों लाख जैन भूखे रहकर विश्व कल्याण की कामना करते हैं। स्ट्रांग मन से की गई कामना पूरे विश्व में शांति कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। भगवान महावीर जब छद्मस्थ अवस्था में अपने कर्म काटने अनार्य क्षेत्र में गए थे, उस समय का एक प्रसंग कहीं पढ़ने को मिला था, उसमें बतलाया गया। तुरुष्क नामक अनार्य देश में बसकुरा नामक बड़ा नगर था। उस नगर में वज्रजंग नामक एक सेठ रहता था। उसके बहुत बड़ा व्यापार था। पुण्यवानी से उसका व्यापार खूब चलता था, धन भी खूब कमाता था। अनार्य देश में धर्म का नामोनिशान नहीं होता, परंतु वज्रजंग सेठ बहुत धार्मिक था। उसके दिल में खूब करुणा थी, किसी के दिल को नहीं दुखाता था। छोटे मोटे जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, गाय कुत्ता आदि सभी जीवों की रक्षा करता। रास्ते में जाते समय कहीं भी गाय बकरी कुत्ते आदि घायल मिलते तो उन्हें घर पर लाकर दवाई पट्टी आदि अनेक प्रकार से उनकी सेवा करता। छोटे पशुओं के ऊपर भार नहीं रखता, स्वस्थ पशु पर भी अधिक भार नहीं लादता। अपने पेट की चिंता करने से पहले पशुओं के पेट की चिंता करता। इस तरह उसके दिल में अपार करुणा थी। और तो और एक साल में अपने व्यापार में जो लाभ होता उसमें से 10% धन गरीबों की सेवा में लगा देता था। इस तरह अनेक अच्छे कार्यों में अपने धन का सदुपयोग करता, जिससे वज्रजन की पुण्यवानी निरंतर खूब बढ़ने लगी। एक बार छद्मस्थ अवस्था में अपने कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते बसकुरा नगर में चातुर्मास करने पधारे। अनार्य देश में कोई साधु साध्वी नहीं आते। वहां पर एक तेजमूर्ति निर्ग्रंथ गुरु को वज्रजन ने देखा। उन्हें देखकर वज्रजन के मन में आया कि मैंने ऐसे निर्ग्रंथों को कहीं ना कहीं जरूर देखा है, पर कहां। दिमाग पर जोर दिया और सोचते सोचते मूर्छा खाकर नीचे गिर पड़ा और जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अहो, मैं भी पूर्व भव में ऐसा साधु था, साधु धर्म का अच्छा पालन किया था आदि आगे की सारी घटना दिखने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी मूर्छा टूटी तो वह तुरंत वहां से उठकर हर्षित होते हुए भगवान के पास आया और विनयपूर्वक वंदन करके बोला, आज मेरा अहोभाग्य की साक्षात कल्प वृक्ष अनार्य देश में आए, मुझे आपके दर्शन हुए। फिर वज्रजन के मन में हुआ कि अभी जाति स्मरण ज्ञान द्वारा मैंने अपने पूर्व भव को देखा, वो सत्य है या स्वप्न, यह जानने के लिए भगवान से पूछा, अहो भगवान, मैंने पूर्व भव में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस भव में अनार्य देश में जन्म लेना पड़ा? तब 4 ज्ञान के धारक भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे वज्रजंग, तुम पिछले भव में श्रावस्ती नगरी में एक वणिक पुत्र थे। तुम्हारे पिता के यहाँ धन का भंडार भरा हुआ, किसी भी प्रकार के वैभव की कमी ना थी। धनवान के साथ साथ तुम्हारे माता पिता बहुत धार्मिक थे। तुम्हारे माता पिता के संस्कार तुम में भी आए। तुम भी अपने माता पिता के साथ धर्मगुरुओं के दर्शन व व्याख्यान आदि सुनने जाते थे। व्याख्यान आदि सुनते सुनते तुम्हारे मन में एक बात निश्चित हो गई कि कर्मों का समूल नष्ट मानव भव में ही हो सकता है। बाकी गतियां कर्म बढ़ाने वाली है। परम पद की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य भव में ही संभव है। यह बात तुम्हारे रोम रोम में बस गई और तुम्हारा वैराग्य बढ़ता गया। समय बीतने पर तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उस जन्म मृत्यु की परंपरा देख तुम्हारा वैराग्य दिनों दिन तेज होने लगा। एक समय श्रावस्ती नगरी में स्वयं बुद्ध नामक आचार्य पधारे। सभी जनता उनकी देशना सुनने गई, तुम भी गए। उनकी देशना सुनकर अनेक जीव प्रतिबोधित हुए, उनमें तुम भी एक थे। तुमने भावोल्लास उत्कृष्ट वैराग्य से संयम अंगीकार कर लिया। संयम लेने में तुम्हारे में एक ही भाव था कि मैं जल्द से जल्द कर्मों का भार हल्का करके मोक्ष जाऊं। इसलिए तुमने खूब कठिन संयम तप त्याग का पालन किया। तुम्हारे दिल में करुणा बहुत थी। आहार पानी लेने जाते तो भी तुम्हारे मन में यह भाव रहते कि हे भगवंत, कितने जीवों का आरंभ हुआ होगा तब यह आहार पानी बना है। ऐसा आहार लाकर खाते हुए तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते कि हे भगवान, मैं अनाहारक पद कब पाऊंगा जिससे मुझे आहार करना ही ना पड़े। और जीवों की यतना की तरफ तुम्हारा खूब ध्यान था। किसी भी जीव को तुम कष्ट नहीं देते थे। साथ ही साथ तुमने ज्ञान भी खूब प्राप्त किया। पर एक दिन तुम्हारे घोर कर्मों का उदय आया जिससे तुम्हारे मन में परिणाम ही पलट गए। तुमने मन में सोचा कि अहो, मैं उच्च कुल से आया हूँ, उच्च कुल में जन्मा हुआ हूँ, फिर तुच्छ जातियों से आए हुए साधुओं को वंदन क्यों करूँ। यह मुझसे नहीं होगा और अगर वंदन नहीं करूँगा तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा और वंदना मुझसे नहीं होगी, अतः मैं गुरुजी से अलग हो जाऊँ। तुम्हारे अशुभ कर्मों के उदय से तुम गुरुजी से अलग होकर अकेले विचरण करने लगे। अलग होकर भी खूब उग्र तपस्या करने लगे व चारित्र भी खूब ऊंचा पालते थे। समय बीतने पर तुमने अपना अंत समय नजदीक आया जानकर सभी जीवयोनि से क्षमा कर संथारा ग्रहण किया। परंतु तुमने जाति अभिमान की आलोचना नहीं की। जातिमत के कारण नीच गोत्र जनित कर्मों का बंधन किया। जातिमत के कारण वहां से 15 दिनों का संथारा पूर्ण कर तू इस अनार्य देश में जन्मा। लेकिन पूर्व भव में साधु धर्म का पालन करते हुए तुम में अपूर्व जीवदया के संस्कार थे, उस कारण से इस भव में भी पशु आदि पर दयाभाव रखते हो। इस दया के संस्कार से पुण्यानुबंध कर तुम यहां से मरकर चौथे देवलोक में जन्म लोगे और देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर तुम महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य बनोगे। वहां पर संयम लेकर त्याग तप की उत्कृष्ट आराधना करोगे। वहां से केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे। भगवान के मुंह से अपना पूर्व भव सुनकर वज्रजन की आंखों से हर्षवगम के आंसू गिरने लगे और सोचने लगा, मुझे अब दीक्षा ले लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान को वंदन कर बोला, हे प्रभु, इस संसार रूप समुद्र में आप ही मेरे तारनहार हो। आज से आपको अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। आप ही बताएं इस समय मैं क्या करूँ जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। आप जो कहेंगे वह करने को तैयार हूँ। वज्रजन की बात सुनकर भगवान ने अपने ज्ञान में उपयोग लगाकर देखा कि अभी इसकी आयु कितनी है। आयु देखकर मनः पर्यवज्ञानी भगवान बोले, हे वज्रजन, अब तुम्हारा आयुष्य मात्र 3 दिन रहा है। तब वज्रजन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, 3 दिन में ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भव सुधर जाए। भगवान बोले, हे वज्रजंग, अब तुम ये धन वैभव व्यापार पत्नी पुत्र परिवार आदि सबकी ममता छोड़ दो, काया की माया छोड़ दो। अब 3 दिन एकचित होकर प्रभु का ध्यान धरो, तेरा भव सुधर जाएगा। भगवान के वचन सुनकर वज्रजंग ने सभी जीवों से क्षमा मांगकर संथारा कर प्रभु ध्यान में बैठ गया। 3 दिन में तो ऐसे ध्यान में लीन हो गया कि बाह्य जगत को भूल कर आत्मस्वरूप में डूबने लगा। इस तरह आत्मस्वरूप को पाते हुए आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में गया और वहां से आयुष्य पूरा कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जाएगा। अतः संतों का सान्निध्य भवसागर से तारने वाला बन जाता है। संयम लिए बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। संयम तो एक न एक भव में लेना ही पड़ेगा। अतः हर आदमी को संयम लेने का मन पक्का करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, कम समय में ही शीघ्र कल्याण हो जाएगा। अंतगत सूत्र को सुनकर मन को पावन बनाइए और संयम लेकर जीवन सफल करिए। धर्म प्रभावना। आचार्य भगवान ने समवायांग सूत्र के अनुसार पर्युषण पर्व का महत्व बतलाया, संवत्सरी के दिनों के फेर का कारण स्पष्ट किया, इतिहास के उदाहरण एवं प्रसंग भी बतलाए। आज संवत्सरी के रोज भाई बहिने सूर्योदय के साथ ही उत्साह के साथ आते चले गए। 5-5 सामायिक करने वालों की संख्या तो भारी थी ही, इसी के साथ पौष्ठ करने वाले भाई बहन भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। 60 से ऊपर भाई बहनों के उपवास की अट्ठाया थी। 9-15 की तपस्याएं भी जारी रही। आज तो पूरा हॉल आगे पीछे ऊपर नीचे खचाखच भर चुका था। लुधियाना, दिल्ली, ब्यावर, डबवाली, होशियारपुर, फगवाड़ा, कपूरथला, विजयनगर, राजकोट, जम्मू, नेपाल, इंदौर आदि बीसीओ गांवों से दर्शनार्थियों ने भी गुरु चरणों में पर्युषण पर्व मनाया। प्रवचन पश्चात की प्रभावना गुप्त गुरु भक्त की तरफ से रहा। 5-5 सामायिक की प्रभावना के लाभार्थी श्री राहुल जी जैन, प्रधान जैन भवन की तरफ से था, एवं करनीदान जी फलोदिया की तरफ से भी प्रभावना दी गई। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।